Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Who sochta ki ab humara prakash khatam? To इसी प्रकार से यद्यपि बुद्धि सूक्ष्म है लेकिन उससे भी सूक्ष्म है अणोरणियान हम एव मैं ही मैं अहम तत्व आत्मा ही सबसे सूक्ष्म है एव निर्धारण अर्थ कर दिया है तदवन उसी प्रकार से महान हम मैं महान हूं बोले वाह भाई वाह इतना सूर्य चंद्र और अगणित तारे और इतना बड़ा विश्व इतना समुद्र न जाने कितना आर पार कुछ पता ही नहीं है विश्व की विशालता से उससे भी आप कह रहे हो हम बोले विश्व की विशालता को जाना किसने तो जिसने जाना जो ज्ञाता है जो दृष्टा है वो तो उससे बड़ा हुआ आजकल के बच्चे कहते हैं बाबा से बाबा तुमने कंप्यूटर नहीं सीखा तुमने ईमेल नहीं सीखा मोबाइल तो तुम्हें आता ही नहीं है अरे ठीक है मोबाइल नहीं आता है लेकिन मोबाइल को बनाने वाला कौन है कंप्यूटर को बनाया ना किसी ने तो दृष्टि उधर की ओर नहीं जाती है कंप्यूटर को बनाया बहुत अच्छा कंप्यूटर रखा और कंप्यूटर जानने की बुद्धि न हो अकल न हो तो क्या करेगा हमारे सामने रख दिया जाए हम तो चला ही नहीं पाएंगे कंप्यूटर तो बहुत बढ़िया नया आया है हजारों रुपए का लेकिन अकल होनी चाहिए ना अब अकल ही नहीं है तब क्या करेंगे तो वो जो अकल है वो जो बुद्धि है अकल माने होता है न कला विद्यते यस्यामिति जिसमें अपनी कोई कला नहीं है तभी तो नकल किया जाता है ना अपनी कोई कला नहीं है तो उसको कहते हैं बुद्धि वो नारायण बुद्धि इससे विशाल बुद्धि से जानने वाला और नियम एक है कि जो जितना सूक्ष्म होता है एक दिन मैंने निवेदन किया था कि आकाश ने सबको दिया ले जाओ भाई हमारे पास शब्द है सो अपना ले जाओ लेकिन आकाश ने किसी का नहीं दिया हमको जरूरत नहीं आकाश ने वायु को दिया वायु ने कहा जरा हमारी भी चंचलता ले लो स्पर्श ले लो बोलना न हमें जरूरत नहीं हाँ शब्द दिया और स्पर्श दिया वायु को फिर तेज आया भैया हमारा भी लेना हमें लेना चाहिए तुम अपने रखो शब्द स्पर्श रूप तीन चीजें दी शब्द स्पर्श रूप रस जल में दिया और मिट्टी ने कहा कि जरा हमारी भी गंध ले लो बोलना हमें मुझे नहीं चाहिए माने उसने सबको दिया और उसका कुछ नहीं लिया ये आकाश इसलिए आकाश सूक्ष्म है और विशाल है लेकिन विशाल और सूक्ष्म होने जो होता है वो व्यापक भी होता है ये नियम है जो सूक्ष्म होगा विशाल होगा वो व्यापक भी होगा अगर व्यापक नहीं तो विशाल ही नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म चीज इसका मतलब पृथ्वी से सूक्ष्म जल जल से सूक्ष्म ऐसे करते जाओ तो आकाश सबसे सूक्ष्म माना जाए आकाश में अभी तक चिड़ियां उड़ रही हैं अभी तक रोडवेज नहीं बना पाया कि वहीं बना देती इस रोड से जाओ इस रोड से मना करो देखिए मनुष्य की खोपड़ी कितनी तेज है कि इसने हाँ इसने प्लेन में बना ली सड़कें उसी रेखा से प्लेन जाता है एकदम जो उसकी रेखा है और जो ऊंचाई है और नहीं तो रोज टकरा जाए मनुष्य की खोपड़ी बड़ी तेज होती है ना एक बार एक हाथी मर के गया तो लोग हंसने लगे इतना बड़ा जानवर और किसने मारा कहीं मनुष्य ने अरे मनुष्य ने मनुष्य तो बहुत छोटा बोला अरे तुमने मनुष्य की खोपड़ी देखी नहीं अभी कि हमारे यहां तो रोज आते हैं कहां आते हैं मरते हुए आते हैं मरते हैं जिंदा कोई लाओ तो पता चले तो जमराज को धर्मराज को लगा कि अरे इतनी मनुष्य की खोपड़ी है उसमें कंप्यूटर भरा है तो फिर ले आओ एक मनुष्य जिंदा पकड़ लाओ। सो एक पटवारी लेखपाल जी थे, अपनी कलम दबाए देर तक लगाते रहे हिसाब और सो गए। तो जमदूतों ने चारपाई पकड़ ली, रास्ता में उन्होंने कहा अरे तुम कौन हो? कहे हम तो जमदूत हैं। कहां लिए जा रहे? बोले जमराज के यहां। अरे रुको, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम तो बहुत जरूरी चीज छोड़े आए वहीं। तो कहा फिर भाग, फिर ले चलो वहीं। ले चला और वहां रखा जा करके उसने झट एक अपने पेट पर लिख लिया खाली कागज में कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूं, जैसे ये पहुंचे तैसे अपनी गद्दी खाली करके इसको बिठा देना। और नीचे विष्णु भगवान दस्तखत कर लिया अपने आप, मुहर लगा ली और हां अब ले चलो, हम अब सामान ले आए अपना। तो वहां गया, वहां जमराज को चिट्ठी पहले थमाए दी, ये ले चिट्ठी बांच लो। सो उन्होंने कहा अरे ये तो विष्णु भगवान का दस्तखत है। तो झट नीचे उतर पड़े, सरकार बैठी आज आपसे, बैठ गया डट के। बोले ये सब खड़बड़ क्या हो रही? कहा कि इधर नरक है इधर स्वर्ग है। कल ये उलट दो, अब इतने दिन हो गए, बहुत दिन बेचारे पड़े रहे चिल्ला रहे हैं, इधर स्वर्ग वाले इधर नरक कर, नरक वाला स्वर्ग कर दिया। और उस धर्मराज से कहा कि देखो तुम दौड़ दौड़ के काम करो जो जो हम बताएं। धर्मराज ने कहा क्या बताएं, विष्णु भगवान का दस्तखत है और अब करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जब ये बात आई तो विष्णु भगवान को स्मरण किया, भगवान तो सब जगह है, व्यापक है, विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हो गए तो उनका महाराज ये क्या मामला? तो कहा महाराज आपका दस्तखत था और कागज। मैंने दस्तखत करते ही नहीं, किए नहीं। कहा कि साहब ये कागज है देख लो। तब समझ में आया कि मनुष्य की खोपड़ी है। तो हाथी घूम झूमता हुआ आ गया कि देखा ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये तो मर्दे मुर्दा आते हैं तुम्हारे यहां, जिंदा कहां आता? मनुष्य की खोपड़ी ये आई जो तुम जमीन पे नाच रहे हो और वो गद्दी पे बैठा है। तो मनुष्य की जो मनुख की खोपड़ी जो है वो बड़ी तेज होती है। तो मैं ये बता रहा था कि विशालता को जानने वाला भी जो है वो बड़ा होता है, एक बात। दूसरी बात एक ये कि जड़ पदार्थ को चेतन ही जानेगा। तो जड़ को चेतन जानता है और चेतन के अंडर में रहता है। जड़ के चेतन अंडर में नहीं रहेगा। इसका मतलब ईश वही है, स्वामी वो है, मालिक वो है। तो जो स्वामी होता है वही मतलब बड़ा होता है। जैसे तुम्हारे यहां तमाम सेठों के यहां नौकर हैं, तो नौकर को कुर्सी बैठा लो अपने, कहां है सरकार बताइए क्या हुक्म है, तो बेवकूफ माना जाएगा। वो भी नौकर हंसेगा कि अरे इन्हें अक्ल नहीं है। तो यहां एक बात बहुत बढ़िया है कि उसकी सूक्ष्मता उसकी विशालता चेतन के द्वारा जानी जाती है। इसलिए अहम तत्व आत्मा सबसे छोटा है, सूक्ष्म है और सबसे महान भी है। अब विरोधी चीजें मैं पहले ही बता चुका कि इसी प्रकार से आपको अपरमेय अनादि अनंत वस्तु को जानना पड़ेगा और कोई जरिया नहीं। आप चले पुरातनोहम पुरुषोहमीशो, पुरातन कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीयांश मनुस्मरेद्य, आठवें में शायद। तो ये एक कहा कवि, कवि माने क्रांतदर्शी, और पुराण, पुराण में पुरा शब्द से प्रत्यय योर नाको अन हो गया तो पुराण शब्द बना, यहां नुक नहीं है। इसका मतलब है बहुत पुराना, उससे भी पुराना, उससे भी पुराना। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हंसने लगे, बोले महाराज आप जानते हो हम नहीं जानते, तो हमारे तो सामने ही आप प्रकट हुए और यशोदा मैया ने पाला पोसा, आप कैसे कह रहे? बोले मेरे मेरा जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, ये बात जो जानता है वो विद्वान है, वो समझदार है। ऐसे हमारे अनेक जन्म हो गए, तान्यहम वेद न, मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं उनको जान सकते। ऐसे तो अवतार लिया माया के द्वारा हमने, और माया माया के सत्वांश से, माया के सत्वांश में प्रतिबिंबित जो है वो है ईश्वर, और मलिन अंश अविद्या में प्रतिबिंबित है वो है जीव। तो इसलिए सत्वांश में प्रतिबिंबित होने के कारण सत्गुण प्रधाना जो माया है, उस माया का अधिपति है परमात्मा ईश्वर। देखो तानहम वेद, उसको मैं जानता हूं, विदो लुटो वा सूत्र है पाणी जी का, उसको मैं जानता हूं। अच्छा आप जानते हैं तो क्या जानते हैं? बोले अनेक जन्मों का हम जानते हैं, और जन कितने जन्म बीते, कितने जन्म आगे और होंगे, उन सब को हमें पता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है सत्वांश माया से, और मजे की बात है कि माया पति है वो। सो नर इंद्र जाल नहीं बूझा, सो नर वो इंद्रजाल एक होता है जादूगर, और वो इंद्रजाल के पास जो जबूड़ा रहता है वो जानता है, इंद्रजाल जो तमाशा रचता है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, बनारस की सच्ची घटना है, कि एक साकर ली बड़ी मोटी जादूगर ने और फेंक दी पहलवानों की ओर, बोले ये साकर, और एक उसकी कड़ी अपनी उंगली में उलझाई ली और कहा कि जो मेरी उंगली को खींच ले उसको 500 रुपए देंगे। पहलवानों ने सोचा उंगली को खींचने में कितनी देर लगती है, तो सांकर लंबी थी, उस सांकर में लग गए, 2 लगे 3 लगे 4 लगे, बड़े बड़े पहलवान लोग। तो वो जो जमूड़ा था उनका वो हंस रहा था, जो जमूड़ा था हंस रहा था, उसने कहा भैया तुम क्यों हंस रहे? बोले ये सांकर जो है वो पीपल की जड़ में बंधी है और तुम्हें दिखाई दे रही उंगली में। बोले यही तो बस जादू है, पीपल की जड़ तुम खींच लोगे क्या? तो सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर जा पर हो सो नट अनुकूला, जा पर नट कृत कपट विकट खगराया, नट कृत विकट कपट लागिन ताहि राम की दाया, लागिन भगवान की कृपा जिस पर होती उसको वो जादू नहीं लगती है। इसलिए माया खलु नर्तकी विचारी, भक्ति के सामने माया नहीं जाती है, वो तो नर्तकी है। अब यहां ये विचार करना है कि मायापति भगवान, उसके अंडर में माया है। अच्छा अब वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और जीव मलिन अंश अविद्या से ग्रस्त है, उसको होश आवाज नहीं है, वो ना अपने को जानता है ना अपने अविद्या को जानता है, और वो अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ और वो उधर सर्वज्ञ, इधर अल्प शक्तिवान, वह सर्वशक्तिमान, इसलिए दोनों में ईश्वर जीव में बहुत अंतर है। ईश्वर जीव में भेद कहो कस, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है बड़ा अच्छा। तो अब आप इतना समझ लो कि ये जो माया को भी जानने वाला ईश्वर है, ओ मायापति, माया से शरीर को रच लेता है, और माया से शरीर को जब चाहता तब उपसंहार भी कर लेता है। भगवान राम भगवान कृष्ण आए, उन्होंने संसार में उपदेश देने के लिए आगमन किया, क्योंकि वही परमात्मा प्रोड्यूसर है, जगत का निर्माता तो वही है ना, वही डायरेक्टर भी है। कौन आदमी को कौन सा पाठ दें, जिस पाठ के करने से काम चल सके उसकी योग्यता उसी क्षमता देख के पाठ दिया जाता है। ब्रज में हमारे वृंदावन में तो रोज ही रासलीला होती, तो जो गांव के बच्चे आते हैं जिन हरेक को पाठ नहीं देते, कौन योग्यता का क्या है उसको वो पाठ दिया जाएगा। किसी को सखी बनाएंगे, किसी को शंकर बनाएंगे, किसी को विष्णु बनाएंगे, किसी को ठाकुर जी बनाएंगे। तो जिसकी जैसी योग्यता है, जिसका जैसा सकल सूरत रूप रंग और एक्टिंग, उसके अनुसार उसको पाठ देता है, तो डायरेक्टर भी है वो। अच्छा, और वही डायरेक्टर ही जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर, वही कभी कभी एक्टर भी बन जाता है। चलो भाई एक्टर हम बन के दिखा देंगे, ऐसे चरित्र करो। तो जो राम भगवान कृष्ण आए, वो हमको उपदेश देने के आए अपने जीवन से कि ऐसे माता पिता का आदर करो, गुरु गह गए पढ़न रघुराई, ऐसे पढ़ने जाओ, ऐसे सब दुष्टों का दलन करो और सज्जनों का रक्षण करो, ये सब बताया। तो बताने के लिए वो आए थे, अवतार लेके आए और चले गए। भाई चले भी तो गए, शरीर तो नहीं रखा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो माया से आए थे, माया से चले गए। और भगवान राम, ये कई लोग ऐसे कहते हैं महात्मा के दर्शन करने से सब काम चले, अरे जो भूल में मत रहना, दर्शन करने से कुछ नहीं होता। संत दर्श जिम पातक टरई, वो थोड़ी दूर टर के जरा यहाँ खड़ा हो जाएगा, और जब तुम आओगे सो फिर चढ़ बैठेगा खोपड़ी पर। मिटई होना चाहिए था, सो मिटई कहाँ है, टरई है। तब अगर भगवान राम के दर्शन से मुक्ति होती होती तो भगवान राम ने फिर उपदेश क्यों दिया है, दशरथ को भी दिया, कौशल्या को भी दिया, निषाद को दिया, लक्ष्मण को दिया। देखो लक्ष्मण जी ने खुद पूछा कि महाराज हमें बताओ, तो उपदेश दिया है। इसी तरह से संत महात्मा लोगों की वाणी जो उपदेश है उसको धारण करना चाहिए। संत महात्मा की भी सेवा करो, ठीक है करो करो न करो, लेकिन उसकी उपदेश की वाणी जरूर सुनो। ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन साधन जो हैं वो बहिरंग हैं, अंतरंग साधन ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। तत्परता हो, संयत इंद्रिया हो और श्रद्धा हो हृदय में, जितनी श्रद्धा अधिक से अधिक होगी उतना ही ज्ञान मिल जाएगा। वो तो जैसे पानी ढालू को चलता है ना, ऐसे ज्ञान विनम्रता को चलता है। ये नियम है, झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ता है वही मुर्दा की पहचान होती है। तो मुर्दा है, अकड़ नहीं है। तो इसलिए यहां कहा गया पुरातनोहम, और मैं बहुत पुराना हूं, और पुरुषाह, एक पुरुष शब्द सांख कारिका में भी है। तो सांखवादी द्वैत दर्शन वाले हैं, वो प्रकृति और पुरुष दो मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति जड़ है, पुरुष का संग करके वो चेतित हो जाती है। उनके यहां एक उदाहरण दिया गया पंग बंधन न्याय, एक लंगड़ा है और एक अंधी है प्रकृति, उसको दिखता नहीं। तो वो जो है प्रकृति उसको अपने सिर पर ले लेती है, और लंगड़ा रास्ता बताता जाता है, चलते जाते हैं। ऐसे प्रकृति पुरुष मिलकर के सृष्टि रचना करते हैं। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंगते प्राक जान गुणान, ये प्राकृत जो गुण है प्रकृति के सत्वरजतम गुण है, इनको भोगता है। और यद्यपि वो असंग है पुरुष, लेकिन प्रकृति का जब विज्ञान प्राप्त हो जाता है, अरे ये तो हमारे प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, हमारे चेतन से चेतित हो रही है, तब जब ये ज्ञान हो जाता है पुरुष को तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा उनके यहां सिद्धांत। लेकिन वेदांत का ये नहीं है, उनके यहां तो पुरुष जीवात्मा को कहते हैं चिदाभास। ये तो तमाम जगत जगतपति और जीवों को बनाने वाला अहम तत्व तो है। अहम तत्व तो मैंने ही सब संसार बनाया, मय्येव सकलम जातम, कल आपने सुना था, मय्येव सकलम प्रतिष्ठितम, मेरे में सब कुछ प्रतिष्ठित है। माने जहां तक सृष्टि है तहां तक सब हमारे द्वारा है, हम में है, आत्मा में है। तो इसीलिए कहा गया मैं पुरुष वह नहीं हूं जो जीव वाला है, जीव जगत जगतपति तो सब हमने बनाए। अच्छा ध्रुव न होते तो दर्शन देने भगवान कैसे आते, मीरा न होती तो भगवान कैसे आते, अच्छा कौशल्या और दशरथ न होते तो राम जी कैसे आते। इसका मतलब यह है कि भक्त की भावना से परमात्मा माया से प्रकट हो जाता है, ये बात जरूर है। लेकिन भक्त की भावना से कहता उसे कोई निराकार है, बताता उसे कोई साकार है, न साकार है न निराकार है, फिर कौन है। बोले भक्त की भावना में तदाकार है, भक्त जैसी भावना करता है, कहीं वो छानी छवाने पहुंच जाता है, कहीं चकिया चलाने चला जाता है, कहीं हुंडी भुलाने जाता है, कहीं किसी की गवाही देने जाता है, साक्षी गोपाल। तो ये तो भक्त की भावना है, उसमें वो माया के द्वारा झट शरीर धारण कर लेता है। लेकिन आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि वो अहम आत्मा तत्व जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और बहुत प्राचीन है, प्राचीनतम है। बहुत पाश्चात वैज्ञानिकों ने पता लगाया, लेकिन पता लगाएगा तो बुद्धि से ही, बुद्धि जो जिसको प्रकाशित हो रही उसी से तो पता लगाएगा। इसलिए ये पुरातनोहम पुरुषोहमीशो, और एक प्रकरण दिया हिरण्मयोहम स्वरूपमस्मी। हिरण्मय माने स्वर्ण के समान चम चम चमकता हुआ स्वयं प्रकाश। तो अहम तत्व को प्रकाशित करने के लिए कोई नहीं है, अहम ही सबको प्रकाशित कर रहा है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय सकल एक ते एक सचेता, सब सब कर परम प्रकाशक जो ये, सब कर राम वनादि अवधपति सोये, राम वन सबको जो प्रकाशित करने वाला है अनादि अनंत स्वरूप वो राम है, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो इसको जो सबको प्रकाशित करता उसको प्रकाशित कौन करेगा भाई। इसलिए अहम तत्व तो सबको हिरण्मय है, चम चम चमक, आत्मा माने ही होता है चम चम चमकने वाला, वो नासी तमोजस जिसमें कोई तम नहीं है, अंधेरा नहीं है। हजार हजार बातें कहा है अंधेरा कि भाई मैं बहुत दिन से इस गुफा में रह रहा हूं, बहुत दिन से रह रहा हूं, तो उसके कहने से क्या होता है बहुत दिन से रह रहा। अरे सूर्य की किरण एक आएगी, लालटेन जरा दिखा दिया, भाग गया। तो इतने दिन से रहने वाला, दो महीने से मान लो कोई अंधेरा रह रहा है, अब वो कहे कि दो महीने लगातार लाइट जलाओ तब हम जाएंगे, वो तो जरा देर में चली जाएगी। इसी प्रकार से अपना अज्ञान मिटाने के लिए एक वृत्ति जरा सी चाहिए, अविद्या नष्ट हो गई। आपके ये बात समझ में आ जाए कि मैं ही सबसे सूक्ष्म हूं, मैं ही सबसे विशाल हूं, और मैं ही सबसे प्राचीन पुरुष हूं, और ये जो पुरुष जीव नहीं हूं, जीव भाव तो आना ही नहीं चाहिए। जीव भाव तब आता है जब शरीर के साथ, शरीरों के साथ तादात्म्य किया जाता है। तो शरीरों के साथ हम तादात्म्य क्यों करें? शरीर तो 5-7 वर्ष बाद बदल जाता है, तो कौन से शरीर के साथ आपने तादात्म्य किया? कर ही नहीं पाए। तो इसलिए मैं स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा अजर अमर शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, चिदानंद स्वरूप हूं। इस प्रकार का जब रात दिन अभ्यास करोगे तब ये बात आएगी कि अरे मैं तो स्वयं प्रकाश हूं। स्वयं प्रकाश माने होता है जिसको बताने के लिए अन्य की जरूरत न हो। जैसे इस किताब को जानने के लिए आंख की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है और सूर्य की जरूरत है, ऐसे ही आंख को जो देख रहा है मन, और मन को जो देख रहा है बुद्धि, बुद्धि को जो देख रहा है मैं तत्व, उसको बताने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट, जिसको कोई औजार न हो जरूरत और जान जाए, वही स्वयं प्रकाश होता है, हिरण्यमय उसी को कहते हैं। हिरण्यमयो हम, और कैसा हूं? बोले शिव मस्मी, मैं संपूर्ण शुभ, अशुभ नहीं है मेरे में, संपूर्ण शुभ मैं हूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
हरिओम, पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 28 जनवरी सोमवार, अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।